लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु और उनके पवित्रतम हृदय के साथ व्यक्तिगत संबंध द्वारा सांत्वना मिले, जिससे हम विश्व के सब लोगों के प्रति करुणावान बनना सीखें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारी आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, भोजन की मेज किसी भी संस्कृति के लिए एक विशेष अर्थ रखता है, जहां हम मानव समाज के वास्तविक ताने बाने को देखते हैं। यह दिलों के मिलन का स्थल होता है, जहां परिवार, समाज, देश और विभिन्न जाति, भाषा, लिंग भेद के लोग अपने जीवन के गिले शिकवे का परित्याग कर एक साथ आते हैं। यह प्रेम अभिव्यक्ति, मेल मिलाप और भ्रातृत्व का एक स्थल है, जहां हम लोगों के बीच से आपसी मन मुटाव, तनाव और शांति को दूर पाते, जो हमें एक दूसरे के संग एक नई समझदारी और एकता में प्रवेश करने को मदद करता है। इस भांति भोजन की मेज हमें एक दूसरे के निकट लाती और ईश्वरीय प्रेम को सच्चे अर्थ में गहराई से समझने और अनुभव करने में मदद करती है। श्रोताओं, प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त के महोत्सव आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों की विषय वस्तु हमारे लिए भोज के सार को व्यक्त करता है, जहां हम मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त को सारी मानव जाति के लिए अपने को समर्पित करते हुए सुनते हैं, जो अपने पास आने वालों को नए जीवन से पोषित करते हैं। आइए हम सुसमाचार में यीशु के जीवनदायी वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात पर चिंतन करें कि यूखारिस्तीय बलिदान के प्रति हमारे मनोभाव क्या हैं। क्या हम पूर्ण तैयारी के संग यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने हेतु अपने को तैयार करते हैं? क्या पवित्र मिस्सा बलिदान में हमारी सहभागिता यीशु के जीवन में हमें पूर्ण रूपेण सहभागी होने में मदद करता है?
यीशु ने लोगों का स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा था, बारहों ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कर दीजिए, जिससे वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सकें। यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सब के लिए खाना खरीदे? वहाँ लगभग 5,000 पुरुष थे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, 50-50 करके उन्हें बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें तोड़कर वह अपने शिष्यों को देने लगे, ताकि वे उन्हें लोगों में बांट दें। सब ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में परम प्रसाद की चमत्कारिक शक्ति को जानने, समझने और अनुभव करने में मदद करे, जो न केवल हमारे भौतिक जीवन को बल्कि आध्यात्मिक जीवन को दिव्य आनंद और प्रेम से पोषित करता है, जहां हम दुनिया में ईश्वरीय प्रेम और शांति के वाहक बनते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए यूखरिस्त के सार को व्यक्त करता है, जहां हम पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान में अपने को ईश्वर से मिलने वाले आशीषों और वरदानों से पोषित होने की बात सुनते हैं। सालेम का राजा मेल्किसेदेक रोटी और दाखरस लाते हुए अब्राहम के लिए बलिदान अर्पित करता और उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान करता है। यहाँ हम यूखरिस्त के एक महत्वपूर्ण आयाम हृदय के उद्गार को रोटी और दाखरस के चढ़ावे स्वरूप व्यक्त पाते हैं, जो हमें नए विधान में यीशु ख्रिस्त का अपने ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करते हुए हमें सारी मानवता के लिए रोटी और दाखरस के रूप में देने को पूर्व भाषित कराता है। यहाँ याजक मेल्किसेदेक का चढ़ावा हमें यीशु के द्वारा किए जाने वाले चढ़ावे को प्रकट करता है, जहाँ वे हमें अपने पिता की ओर उठाए जाने की बात घोषित करते हैं। श्रोताओं, कुरुंथियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए उसी बात की चर्चा करता है। यीशु दुखभोग के पूर्व जहाँ उन्होंने शाब्दिक रूप में अपने शरीर को तोड़ा और लहू बहाया, अपने को शिष्यों के लिए रोटी और दाखरस के रूप में तोड़ते और देते हैं। यह हमारे लिए उनके अभूतपूर्व प्रेम को व्यक्त करता है और अपने इस कार्य के द्वारा वे सदा सदा के लिए अपने को हमारे संग संयुक्त कर लेते हैं। वे अपने इस घटना की याद हर भोजन की मेज में हमें करने को कहते हैं, जहां हम एक परिवार, समुदाय और समाज के रूप में जमा होते हुए एक ही कटोरा और एक ही थाल को आपस में साझा करते हैं। इस भांति हमारा दैनिक भोज हमारे लिए ईश्वरीय प्रेम की निशानी बनती है, जहां हम स्वयं अपने को व्यक्तिगत रूप में तोड़ते और एक दूसरे को निस्वार्थ रूप में देते हैं। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसे हमने सुना हमें इस बात को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है कि हम यीशु में एक ही परिवार के अंग हैं, जो एक ही कटोरे और एक ही थाल को एक दूसरे के संग साझा करने हेतु बुलाए गए हैं। यह हमें यीशु ख्रिस्त हमारे मुक्तिदाता में पिता ईश्वर की संतान होने की अद्वितीय मनोभाव को प्रकट करता है। यीशु अपने पीछे आने वालों में सबों की चिंता करते और उन्हें अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। वे उन्हें पिता की ओर से मिलने वाले आशीष और कृपाओं के भागीदार बनाते हैं। उनका प्रेमपूर्ण कार्य हमें अपने जीवन में अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति को एक दूसरे के संग साझा करने का आह्वान करता है, और जब हम प्रेम और उदारता में ऐसा करते तो यह हमारे लिए दुगुना हो जाता है। आइए हम प्रभु से निवेदन करें कि वे हमें उदारता में बढ़ने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम अपने जीवन की छोटी चीजों को जरूरत में पड़े लोगों के संग बांटने में तत्पर रह सकें।
Thank you. आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने सरकारों एवं प्रशासकों की जयंती के अवसर पर विभिन्न राष्ट्रों के सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने इस अवसर पर उन्हें प्राकृतिक नियम की याद दिलाई तथा संत थॉमस मोर का उदाहरण दिया, जिन्होंने सत्य को धोखा देने के बजाय उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी इस तत्परता ने उन्हें स्वतंत्रता एवं अंतःकरण को प्राथमिकता देने के कारण शहीद बना दिया। सांसदों को संबोधित करते हुए पोप ने कहा, मुझे सरकारों एवं प्रशासकों की जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अंतर संसदीय संघ के मिलन समारोह के अवसर पर आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। मैं 68 देशों से आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का अभिवादन करता हूं, विशेषकर राष्ट्राध्यक्षों का। सरकारों एवं प्रशासकों की जयंती 20 से 22 जून तक वैटिकन में मनाया जा रहा है। पोप ने कहा, राजनीतिक गतिविधि को उदारता का सर्वोत्तम रूप के रूप में परिभाषित किया गया है और वास्तव में यदि समाज एवं सार्वजनिक कल्याण के लिए की जाने वाली सेवा पर विचार किया जाए तो यह वास्तव में उस ख्रिस्त प्रेम का कार्य प्रतीत होता है जो सिद्धांत मात्र नहीं बल्कि मानव के पक्ष में हमेशा ईश्वर के कार्य का एक ठोस संकेत एवं गवाही होता है। अपने संदेश में पोप लियो 14वें ने वर्तमान की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर 3 बिंदुओं पर चिंतन किया, सामुदायिक हित को बढ़ावा देना, धार्मिक स्वतंत्रता एवं अंतर संवाद को बढ़ावा देना और प्राकृतिक नियमों का सम्मान करना। पोप ने कहा, पहला बिंदु आपको सौंपे गए कार्य से संबंधित है जिसमें किसी व्यक्तिगत हित से परे सामुदायिक हित को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना शामिल है, विशेषकर सबसे कमजोर एवं हाशिए पर पड़े लोगों की। पोप लियो ने गौर किया कि जो लोग विषम परिस्थितियों में रहते हैं वे अपनी आवाज बुलंद करने के लिए चिल्लाते हैं लेकिन अक्सर कोई उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं होता। यह असंतुलन स्थायी अन्याय की स्थिति पैदा करता है जो आसानी से हिंसा एवं धीरे धीरे युद्ध की त्रासदी की ओर ले जाता। इसके बजाय संसाधनों के उचित वितरण को बढ़ावा देकर एक अच्छी राजनीतिक कार्रवाई सामाजिक स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भाव एवं शांति के लिए एक प्रभावी सेवा प्रदान कर सकती है। दूसरा बिंदु धार्मिक स्वतंत्रता एवं अंतर धार्मिक संवाद पर चिंतन करते हुए पोप ने कहा, इस क्षेत्र में भी जो आज तेजी से प्रासंगिक होता जा रहा है राजनीतिक कार्रवाई बहुत कुछ कर सकती है, ऐसी परिस्थितियों को बढ़ावा दे सकती है जिससे धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिले और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सम्मानजनक और रचनात्मक मुलाकात विकसित हो सके। संत पापा ने राजनीतिक कार्य में उन बिंदुओं को खोजना उपयोगी बतलाया जो सभी को एकजुट करता है। इसमें एक आवश्यक संदर्भ प्राकृतिक कानून का है जो मानव हाथों से नहीं लिखा गया है लेकिन सार्वभौमिक रूप से हर युग के लिए मान्य है। अंत में संत पापा ने संत थॉमस मोर का उदाहरण देते हुए कहा, जिस साहस के साथ उन्होंने सत्य को धोखा देने के बजाय उसके लिए अपने जीवन का बलिदान करने में संकोच नहीं किया वे आज भी हमारे लिए स्वतंत्रता एवं अंतःकरण को प्राथमिकता देने के आदर्श हैं। उनका उदाहरण आप सभी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने।
संत पापा लियो 14वें ने शनिवार 21 जून को संत प्रकरण के लिए गठित विभाग के 3 धर्मशास्त्रीय सलाहकारों की नियुक्ति की है। वे हैं लुगानो स्विट्जरलैंड के धर्मशास्त्र संकाय के रेक्टर रेने रुक्स, रोम स्थित परम धर्मपीठीय विश्वविद्यालय अंतोनियानुम के धर्मशास्त्र संकाय में व्याख्याता सिस्टर कियारा कोडाजी SFA और रोम स्थित परम धर्मपीठीय ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय के कोलेजियम मैक्सिमम के धर्मशास्त्र संकाय में एसोसिएट लेक्चरर सबसे प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम्मा कैरोलियो बोनफेत्ती। और संत पापा लियो 14वें ने खोजी पत्रकार पावला गाउज के सम्मान में पेरू के एक थिएटर प्रदर्शन के अवसर पर एक संदेश भेजा और कलीसिया में दुर्व्यवहार के प्रति शून्य सहिष्णुता की संस्कृति और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा का आह्वान किया। संत पापा के संदेश नाट्य निर्माण प्रोजेक्टो उगाज के प्रदर्शन में पढ़े गए जो वर्तमान में लीमा पेरू में चल रहा है। यह नाटक खोजी पत्रकार पावला उगाज को सम्मानित करता है जो अब दमन किए गए समाज पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं और जिन्होंने अपने काम के लिए लगातार उत्पीड़न का सामना किया है। अपने संदेश में संत पापा ने पेरू के लोगों के लिए अपनी चिंता और आशा दोनों को साझा किया। गहरे संस्थागत और सामाजिक तनाव के इस समय में स्वतंत्र और नैतिक पत्रकारिता की रक्षा करना न केवल न्याय का कार्य है, बल्कि उन सभी का कर्तव्य है जो एक मजबूत और सहभागी लोकतंत्र की आकांक्षा करते हैं। उन्होंने पेरू के अधिकारियों, नागर समाज और हर नागरिक से अपील की कि वे उन लोगों की रक्षा करें जो सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से लेकर मुख्यधारा मीडिया तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर राजधानी तक ईमानदारी से सच्चाई की रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने लिखा, जहां भी एक पत्रकार को चुप कराया जाता है उस देश की लोकतांत्रिक आत्मा कमजोर होती है। संत पापा ने सभी पेरू के संचारकों से कहा, डरे नहीं, अपने काम के माध्यम से आप शांति, एकता और सामाजिक संवाद का निर्माता हो सकते हैं। अंधकार में प्रकाश बोने वाले बने। संत पापा एक ऐसी कलीसिया के लिए अपनी आशा व्यक्त करते हैं जहां किसी को भी चुपचाप पीड़ित नहीं होना चाहिए और जहां सत्य से नहीं डरना चाहिए, बल्कि मुक्ति के मार्ग के रूप में उसे अपनाना चाहिए। उधर शुक्रवार 20 जून को फोकोलारे आंदोलन की पहली अध्यक्ष मरिया वोचे की मृत्यु हो गई, जिन्होंने 2008 से 2021 तक आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनका अंतिम संस्कार सोमवार 23 जून को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे रुक्का दी पापा के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में होगा। 24 मार्च 2008 को फोकोलारे आंदोलन की संस्थापिका कियारा लूबी की मृत्यु के बाद मरिया वोचे को पहली अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 2021 तक 2 कार्यकालों के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। यह आंदोलन दुनिया भर के 182 देशों में फैला हुआ है और इसके 20 लाख सदस्य हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।
कदम दर कदम पोप लियो 14वें दुनिया को अपना परिचय देते हैं।
पाप सबों को शांति मिले
और उसी क्षण से उनके कदम हमारे भी बन गए हैं।
मैं आपके पास एक भाई के रूप में आया हूं, जो आपके विश्वास और आपके आनंद का सेवक बनना चाहता है।
संत पेत्रुस की दान राशि में अपने योगदान के साथ संत पिता के कदमों का ठोस रूप से समर्थन करें। आप उन्हें दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करने में मदद करेंगे और जरूरतमंद भाइयों और बहनों की सहायता में हाथ बटाएंगे।
भाइयों, बहनों, यह प्रेम का समय है।
पोप लियो 14वें के कदमों का समर्थन करें। संत पेत्रुस के अनुदान राशि में योगदान दें। संत पेत्रो .va के साइट www.obolo पर जरूर जाएं।